नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दोस्तों। मैं हूं जगत चंदौली
और मैं हूं प्रेमा नेगी।
और दोस्तों, हर बार की तरह हमारे पास आज भी हैं कुछ खास जानकारियां।
अब ये तो जाहिर सी बात है कि जानकारी एचआईवी के संबंध में ही होगी, क्योंकि आप तो हमारा मकसद जानते ही हैं, एचआईवी के प्रति सभी को जागरूक करना।
तो आज हम आपको बताएंगे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बारे में। आखिर क्या है ये थेरेपी? एक एचआईवी पॉजिटिव इंसान को इसकी जरूरत क्यों होती है? क्या इससे एचआईवी को रोका जा सकता है? ये सब जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन हमारे सेगमेंट
जानो अनजाने में।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक ऐसी कोई भी दवा नहीं बनी जिससे एचआईवी को पूरी तरह खत्म किया जा सके। लेकिन हाँ दोस्तों, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि एआरटी की मदद से इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है।
एआरटी की दवाइयाँ शरीर में मौजूद एचआईवी के वायरस को नियंत्रण में रखती हैं, ताकि जिस गति से ये वायरस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है उस गति को कम किया जा सके।
लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को शुरू से ही इस थेरेपी की जरूरत हो,
क्योंकि ये निर्भर करता है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर। यदि शरीर में CD4 की संख्या 200 से कम हो जाती है और शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म होने लगती है, तो उस समय एआरटी की आवश्यकता होती है।
बिल्कुल,
एआरटी की दवाइयों की मदद से शरीर में मौजूद एचआईवी का वायरस कंट्रोल में रहता है, यानी कि नियंत्रण में रहता है, और शरीर अपनी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को फिर से विकसित कर लेता है।
लेकिन दोस्तों, ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक बार एआरटी की दवाइयाँ शुरू करने के बाद इन्हें लेने में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, यानी कि दवाई को निश्चित समय पर नियमित रूप से बिना किसी परेशानी के आजीवन लेते रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो एचआईवी के वायरस फिर से सक्रिय हो सकते हैं और शरीर पर फिर से अपना बुरा प्रभाव छोड़ सकते हैं।
साथ ही दोस्तों, यहाँ एक और ध्यान रखने वाली बात है कि जो व्यक्ति ये थेरेपी ले रहा है उसे समय समय पर एआरटी सेंटर में जाकर अपनी जांच भी करवाते रहना चाहिए, ताकि शरीर की सही स्थिति का पता चलता रहे।
कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए।
और आइए दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां एक खूबसूरत सी भेजा फ्राई कैप इंतजार कर रही है हमारे आज के विजेता के सिर पे सजने का।
दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, अगर किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में CD4 की संख्या 200 या उससे कम है तो उसका क्या मतलब है?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि उसे एंटी रेट्रोवायरल इलाज शुरू कर देना चाहिए।
और एपिसोड 46 का सही जवाब देकर हमारी आज की लकी विजेता बनी है उर्मिला जी, सोलन हिमाचल प्रदेश से। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों, अब हमारा आज का सवाल।
और आज का सवाल है, एक्यूट एचआईवी सिंड्रोम क्या है? अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए, एक्यूट एचआईवी सिंड्रोम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए, जब एचआईवी एड्स की परिस्थिति में प्रगति करता है, बी, वो परिस्थिति जहां व्यक्ति एचआईवी संक्रमण होते ही बीमार हो जाता है, सी, एड्स के रोगी के लिए अंतिम घातक रोग, और डी, इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए, ए, जब एचआईवी एड्स की परिस्थिति में प्रगति करता है, बी, वो परिस्थिति जहां व्यक्ति एचआईवी संक्रमण होते ही बीमार हो जाता है, सी, एड्स के रोगी के लिए अंतिम घातक रोग, और डी, इनमें से कोई नहीं।
तो जल्दी कीजिए दोस्तों, अगर आपको जवाब मालूम है तो फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND50 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ABC या D और हमें लिखकर भेज दीजिए 9717678223 पर।
और दोस्तों अब बात हमारे सेगमेंट आमने सामने की। शर्मिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम शर्मिल दुबे है, मैं एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन में एज ए काउंसलर कार्य पर हूँ।
अच्छा शर्मिल जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि ART क्या है और क्या ये HIV को पूरी तरह से ठीक कर सकती है?
ART मीन्स होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। यह एक लाइफ लॉन्ग पद्धति है जो कि किसी भी HIV संक्रमित व्यक्ति को एक बार शुरू की जाती है तो सारी जिंदगी खानी पड़ती है। और जहाँ तक यह ठीक करने की बात है तो HIV संक्रमण पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर अगर HIV का संक्रमण हो गया है तो वह ठीक नहीं होता है, लेकिन ART लेने से वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अपनी एक नॉर्मल जिंदगी की तरह जी सकता है, अपने परिवार में रह सकता है अच्छे तरीके से।
शर्मिल जी ये बताइए कि ART लेने की क्या प्रक्रिया है और क्या ये महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में अलग अलग तरीके से दी जाती है?
ART लेने की बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर और काउंसलर की बात ध्यान में रखनी पड़ती है। औरतों में तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि यह किसी को अलग अलग दवाइयां दी जाए, इसमें सबके लिए एक ही दवा होती है और छोटे बच्चे होते हैं उनके ड्रॉप के माध्यम से उन्हें पिलाया जाता है। और मुख्यतः गर्भवती महिलाओं के लिए ध्यान में रखा गया है कि वह गर्भ धारण करने के 6 महीने के बाद उनकी ART शुरू की जाती है और बच्चा पैदा होने के पहले एक नेवरापिन की डोज दी जाती है जिससे कि बच्चे को संक्रमण से बचाया जा सके।
जी अच्छा, क्या ART लेने से सभी को साइड इफेक्ट्स होते हैं?
जी हाँ, सभी व्यक्तियों में ART का साइड इफेक्ट होता है।
अच्छा ये बताइए, जिन्हें ये साइड इफेक्ट्स होते हैं उन्हें किस तरह मैनेज करना चाहिए?
हम पहले व्यक्ति को केयर होम में एडमिट करते हैं डॉक्टर और नर्स के गाइडेंस में और उसके बाद ART शुरू की जाती है। केयर होम में 8 से 10 दिन तक व्यक्ति एडमिट होता है और उसकी फिर जो भी साइड इफेक्ट होता है और डॉक्टर देख करके उस साइड इफेक्ट को धीरे धीरे कम करता है, लेकिन ART उसकी बंद नहीं की जाती है, ART शुरू रहती है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के खास मेहमान जिनसे हम बात कर रहे थे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बारे में। प्रेमा इसी बात पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ गई, अगर इजाजत हो तो सुनो।
इशाद इशाद।
शुक्रिया मोहतरमा। ये लग्जिशें ही संभलना तुझे सिखाएंगी, ये लग्जिशें ही संभलना तुझे सिखाएंगी, कदम कदम पे सहारों का मुंह न देखा कर।
वाह वाह जगत, क्या बात कह दी तुमने, तुम तो पूरे शायर बन गए हो।
जह नसीब।
और आइए दोस्तों अब बात करते हैं आपके खतों की, आपके ईमेल्स की, जिनके जरिए आप हमसे अपने सवाल पूछते हैं।
आज हम आपकी बात में जो चिट्ठी पढ़ने वाले हैं इसे जानते हैं किसने लिखकर भेजा है। प्रेमा तुम बताओ।
अब जगत चिट्ठी तो तुम्हारे हाथ में है तो तुम ही बताओ किसने लिख के भेजा है।
तो भाई मैं ही बताता हूँ, इसे हमें लिखकर भेजा है सूरज उनियाल जी ने उत्तराखंड से, और वो ये पूछ रहे हैं कि अगर पत्नी को HIV/AIDS है तो क्या उसे अपने पति को ये बता देना चाहिए और उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
सूरज जी, वैसे तो कोई भी व्यक्ति अपने HIV स्टेटस के बारे में बताना चाहे या ना बताना चाहे ये उसका अधिकार है, लेकिन जहां बात यौन साथी की आती है तो किसी भी व्यक्ति को अपने पार्टनर को अपना HIV स्टेटस के बारे में जरूर बताना चाहिए, नहीं तो HIV का संक्रमण उसके साथी को होने के भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए किसी भी पति पत्नी को एक दूसरे से HIV स्टेटस के बारे में बात करते हुए सावधानी भी बरतनी चाहिए और कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हुए ही सुरक्षित यौन संबंध बनाने चाहिए।
तो दोस्तों आप हमें ऐसे ही खत लिखते रहिए, ईमेल्स भेजते रहिए ताकि हम आपके लिए लेकर आ सकें HIV से जुड़ी वो तमाम बातें, वो तमाम जानकारियाँ जो आप हमसे चाहते हैं।
खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट, अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYDISHAA@gmail.com।
और जगत, अब समय आ चुका है हमारे श्रोताओं के मनोरंजन का।
बिल्कुल प्रेमा भाई, जानकारियाँ देने के साथ साथ अपने श्रोताओं के मनोरंजन का ख्याल रखना भी तो हमारा ही काम है, क्यों?
हाँ हाँ बिल्कुल। तो जगत, सुना जाए हमारा रेडियो धारावाहिक जीवन की राह।
बिल्कुल।
पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, जयपाल के एचआईवी पॉजिटिव होने की बात पता चलने से गांव के लोगों का जयपाल और उसके परिवार के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है।
और उधर मोहित इस बार परीक्षा में फर्स्ट आता है और उसे एक बार फिर अपनी स्कॉलरशिप वापस मिल जाती है। विनोद परेशान है कि वो रविता को अपने एचआईवी पॉजिटिव होने की बात कैसे बताएगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कि धारावाहिक जीवन की राह में कहानी अब क्या मोड़ लेती है।
विनोद, विनोद बेटा, ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। ये लड़का कहाँ चला गया, वो भी इतनी सुबह सुबह। चलो चाय तो रखती हूँ, पर ये चिट्ठी, ये कैसी चिट्ठी है? हे भगवान, सुनिए सुनिए जी, अजय सुनते हो?
क्या हुआ सरिता, ये सुबह सुबह क्यों घर सर पर उठा रखा है तुमने?
विनोद,
सरिता,
चिट्ठी, ये चिट्ठी पढ़िए।
क्या लिखा है इस चिट्ठी में, दो।
लीजिए।
पिताजी, आपने जो जयपाल के साथ किया वो नाइंसाफी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है।
विनोद,
बर्दाश्त नहीं हो रही है, और जयपाल की जिंदगी देखते हुए मुझे समझ आ गया है कि एचआईवी पॉजिटिव इंसान के लिए समाज में कोई जगह नहीं है।
हे राम।
उसके लिए समाज, रिश्ते नाते, यहाँ तक कि अपने भी बेगाने हो जाते हैं। जब ऐसे इंसान की समाज को जरूरत ही नहीं है तो उसका जीना भी जरूरी है। यही तो मैं चाहता हूँ कि जयपाल तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि दुनिया के हजारों एचआईवी पॉजिटिव लोगों में से आपका बेटा विनोद, यानी कि मैं भी हूँ।
विनोद, एचआईवी नहीं।
और मुझे नहीं लगता कि मुझे भी अब ये जिंदगी छीनी चाहिए,
विनोद,
जिसमें ना तो मुझे आप लोगों का सहयोग मिल सकता है और ना ही अपना प्यार रविता मिल सकती है।
सब आपकी वजह से हो रहा है।
मैं हमेशा के लिए आपसे दूर, बहुत दूर जा रहा हूँ। आपका बेटा विनोद,
विनोद,
इस सरिता, ये तेरा बेटा क्या लिख कर गया, ये क्या हो गया सरिता?
नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती।
सरिता,
आप अभी जाइए, जाकर मेरे बेटे को वापस लाइए।
हाँ सरिता, मैं विनोद को वापस ले आऊंगा सरिता।
हाय मेरा बेटा
विनोद, विनोद,
विनोद,
बेटा विनोद,
विनोद,
विनोद, कहाँ हो तुम? विनोद, विनोद,
मैं खाने दो ना, भूख लगी है।
भूख लगी है? हे भगवान, अब इस बेचारी बच्ची को कैसे समझाऊं कि घर में खाने का एक भी दाना नहीं है।
मैं खाना दो ना।
हाँ हाँ, मैं अभी खाना देती हूँ, अपनी बिटिया को अभी खाना ला कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले ये पानी पी ले, फिर मैं तुझे खाना देती हूँ। हाँ
नहीं, तुमने रात भी मुझे पानी मिलाकर ही सुला दिया था, मुझे खाना चाहिए।
राधा, मेरी अच्छी बिटिया है ना, पहले ये पानी पी ली।
नहीं
राधा, मेरी अच्छी बिटिया है ना।
राधा,
पिताजी, पिताजी देखो ना, माँ मुझे खाना नहीं दे रही है। मैं खाना मांगती हूँ तो वो मुझे बस पानी दे देती है। रात भी ऐसे ही किया था।
लक्ष्मी, ये सब क्या है?
वो राधा खाना मांग रही है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। थोड़े चावल हैं और एक दो रोटी का आटा भी है, लेकिन वो तो मैंने आपकी दवा से पहले खाने के लिए।
हे भगवान, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बच्ची को मत दे। वैसे भी मेरे इन हालातों का जिम्मेदार तो कोई और ही है ना, और उसे सजा मैं खुद दूंगा अपने हाथों से। मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? ये रही। लक्ष्मी, तुम राधा को रोटी बनाकर दो, मैं बस अभी आया।
लेकिन आप जा कहाँ रहे?
कहीं नहीं, बस मैं अभी आता हूँ।
और ये कुल्हाड़ी, ये कहाँ लिए जा रहे हैं आप?
लक्ष्मी, तुम बस उसको खाना बनाकर दो, मैं बस अभी आता हूँ।
सुनिए सुनिए तो।
रविता रविता, ये ले बेटा, ये गरम गरम रोटियाँ अपने पिताजी को दिया। रविता?
हाँ माँ।
बेटा, रोटियाँ ठंडी हो रही हैं, अपने पिताजी को दिया।
हाँ माँ, हाँ अभी देकर आती हूँ।
पता नहीं इस लड़की का ध्यान कहाँ है आजकल।
विनोद! अरे कहाँ चला गया विनोद?
प्रधान जी!
अरे रामप्रसाद, तुमने विनोद को कहीं देखा है क्या?
विनोद बाबू?
हाँ।
अरे उन्हें तो अभी 10 मिनट पहले ही वहाँ झील की तरफ जाते हुए देखा था।
क्या
कोई बात है क्या प्रधान जी?
नहीं नहीं, कुछ बात नहीं है। तुम जाओ, मैं देखता हूँ।
कोई तो बात है प्रधान जी, इतना घबराए हुए।
पिताजी, ये रोटियाँ और ये रही सब्जी।
हाँ बेटा, यहाँ रख दो।
पिताजी।
हाँ?
वो पिताजी, आपसे।
हाँ हाँ, बोलो ना।
आपसे कुछ बात करनी थी पिताजी।
यही ना, कि तुम प्रधान जी के बेटे विनोद से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो।
पिताजी, आपको पता है?
बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। भले ही मैं यहाँ गांव से दूर शहर में रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे हर पल की खबर मुझे मिल जाती है। कटोरी तुम्हारे बारे में हर बात तुम्हारी माँ को बता देती थी और वो मुझे। लेकिन मैं तो सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब तुम खुद मुझसे ये बात कहोगी।
पिताजी!
देखो बेटा, वैसे मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, अगर विनोद तुम्हारी पढ़ाई होने तक रुक सकता है तो।
सच पिताजी? पिताजी आप बहुत अच्छे हैं।
मुझे माफ कर दो रविता, हम इस जन्म में नहीं मिल सकते।
विनोद! विनोद बेटा रुक जा!
हम इस जन्म में नहीं मिल सकते।
नहीं बेटा विनोद,
मुझे माफ कर दे।
बेटा विनोद,
मुझे माफ कर देना।
विनोद बेटा नहीं,
मुझे माफ कर देना।
बेटा नहीं,
रविता!
अरे अरे कोई भाई, अरे अरे मेरे बेटे को बचा, वो जेल में कूद गया। अरे कोई मेरे बेटे को बचा लो भाई।
ये तो प्रधान है, पर ये इस तरह क्यों चिल्ला रहा है?
अरे
क्या हुआ प्रधान जी?
अरे भाई मेरे बेटे को बचा लो, वो जेल में कूद गया।
क्या?
मेरे बेटे को
प्रधान जी, आप हौसला रखो। विनोद बाबू, मैं आ रहा हूं। विनोद!
अरे अरे देखो, अरे देखो देखो, जयपाल झील में कूद गया। अरे कोई तो बचाओ।
जयपाल, मेरे बेटे को बचा लो।
अरे क्या हुआ, ये झील के पास बड़ी भीड़ लगी हुई है, किसी से पूछो तो। अरे भाई हुआ क्या यहाँ पर?
अरे तुमने देखा नहीं, विनोद बाबू और जयपाल दोनों झील में कूद गए।
क्या?
हाँ, और जयपाल तो उसे बचाने के लिए कूद गया है।
हे भगवान, जयपाल बैठी भी।
धनवंती दीदी! ओ धनवंती दीदी, अरे सुनती हो?
आ रही हूँ लक्ष्मी।
अरे लक्ष्मी, क्या हुआ, तू इतनी घबराई हुई क्यों है?
दीदी वो,
अरे लक्ष्मी बोजी,
सूरज भैजी जल्दी कुछ कीजिए, उन्हें रोक लीजिए सूरज भैजी।
हाँ हाँ, लेकिन बात क्या है?
वो गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर प्रधान को मारने के लिए निकल गए हैं।
क्या?
हाँ।
धनवंती बीबी जी, ओ धनवंती बीबी जी।
अरे कटोरी
बीबी जी, वो विनोद बाबू झील में कूद गए हैं।
क्या? विनोद झील में?
विनोद झील में कूद गया?
हाँ, और उन्हें बचाने के लिए जयपाल भैजी भी झील में कूद गए।
जयपाल भी कूद गया?
क्या, हे भगवान, अब क्या होगा?
लक्ष्मी बीबी जी, आप बिल्कुल मत घबराइए। जयपाल भैजी ठीक है और उन्होंने विनोद बाबू को पानी से भी बाहर निकाल लिया है, लेकिन विनोद बाबू, उनकी तबीयत बहुत खराब है। प्रधान जी उन्हें बड़े अस्पताल लेकर गए हैं।
पिताजी, पिताजी विनोद, पिताजी मुझे वहाँ जाना है।
हाँ बेटा, तुम घबराओ मत, हम सब चलते हैं। चलो चलो,
हाँ,
चलो,
हाँ,
चलो,
हाँ,
चलो,
हाँ,
चलो।
वैसे जगत, इस कार्यक्रम के जरिए अब तक हम अपने श्रोताओं को एचआईवी के संबंध में काफी सारी जानकारियां दे चुके हैं, है ना?
हाँ, ये तो है।
और हमें अपने श्रोताओं के खतों और ईमेल्स के जरिए उनकी जागरूकता का पता भी चलता रहता है।
बिल्कुल।
पर क्यों ना आज इस बात को हमारे श्रोताओं के बीच में ही साबित किया जाए।
क्या बीच में ही साबित किया जाए? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो प्रेमा?
तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो जगत? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि क्यों ना आज हम अपने श्रोताओं से क्या किया जाए में ये पूछें कि वो कोई भी एक ऐसी जानकारी बताएं जिसके बारे में उन्हें कार्यक्रम शुरू होने से पहले पता ही नहीं था और वो जानकारी उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए मिली हो।
हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है प्रेमा।
तो चलो फिर पूछते हैं।
बिल्कुल।
पहले तो हमें सिर्फ एड्स के बारे में ये पता था कि ये सिर्फ असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है और सभी लोग यही मानते थे कि सिर्फ ये एक विषय है जिससे ये फैलता है। लेकिन अब जब हमने नया दूसरा कार्यक्रम सुना है तो हमें ज़्यादा जानकारी मिली है कि एचआईवी सिर्फ असुरक्षित यौन संबंधों से ही नहीं, जब किसी को खून चढ़ाया जाता है तो उससे भी फैलता है और एक माँ के द्वारा एक बच्चे को भी लगता है ये बीमारी।
नए दिशा कार्यक्रम सुन के मेरे को काफ़ी जानकारी मिली। पहले मुझे बिल्कुल भी एचआईवी के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब नए दिशा कार्यक्रम को सुन के मुझे एचआईवी और एड्स के बारे में जानकारी मिली, जैसे कि एचआईवी टेस्ट कैसे होता है, कहाँ होता है और इसके कारणों के बारे में पता चला।
पहले मुझे ये पता नहीं था कि एचआईवी के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। नई दिशा कार्यक्रम के 12 एपिसोड में मुझे पता चला।
मुझे एचआईवी के बारे में पहले ऐसी विशेष जानकारी नहीं थी। इस कार्यक्रम को सुन के थोड़ा हमें ज्यादा नॉलेज हो गया है, तो महिलाएं आपस में इसके बारे में खुलकर थोड़ा बहुत चर्चा भी कर लेती हैं।
तो दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, तो हमें खुशी है कि आप हमारे कार्यक्रम को बेहद संजीदगी से सुनते हैं।
और वैसे भी प्रेमा, जागरूक श्रोताओं की तो यही निशानी होती है।
तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। लेकिन जाने से पहले हम अपने सामुदायिक संवाददाताओं का हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए और उनके विचार हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद करते हैं।
साथ ही हम सामुदायिक रेडियो हैवलवाणी और मंदाकिनी की आवाज का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस प्रोग्राम को उत्तराखंड के पहाड़ों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा रहे हैं।
इसके लिए हम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के भी शुक्रगुजार हैं, जिनके वित्तीय सहयोग से आईडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है।
और दोस्तों, अब मुझे यानी जगत और प्रेमा को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।